आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। रैंडोल्फ डन द्वारा। अध्याय एक। विभिन्न प्रकार की पूजा हमेशा से अस्तित्व में रही है। अधिकांश लोग, यदि सभी नहीं तो अब और प्राचीन काल में किसी न किसी इकाई की पूजा करते रहे हैं। आदिम मनुष्य शक्ति के सभी प्रकटीकरणों से डरता था। वह हर प्राकृतिक घटना की पूजा करता था जिसे वह समझ नहीं सकता था। तूफान, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी, आग, गर्मी और ठंड जैसी शक्तिशाली प्राकृतिक शक्तियों के अवलोकन ने मनुष्य के विस्तारित मन को बहुत प्रभावित किया। जीवन की अकथनीय चीजों को अभी भी ईश्वर के कार्य और प्रभु की रहस्यमय व्यवस्था कहा जाता है। यह ज्ञात है कि 500 से 600 के बीच ऐसी जनजातीय इकाइयों का सामाजिक और धार्मिक विकास का अपना स्वतंत्र इतिहास था, जो एक दूसरे से पूरी तरह अलग थलग थे, सिवाय उनके क्षेत्रों की सीमाओं पर कभी कभार होने वाले सीमांत संपर्कों के। ऑस्ट्रेलिया की सभी जनजातियों में बिना किसी अपवाद के एक सर्वोच्च शक्ति में विश्वास मौजूद है, जो सभी सृष्टि का पहला कारण है। प्राचीन मिस्रवासियों के अपने सूर्य देवता तथा पाताल लोक के देवता थे, जबकि बेबीलोन, ग्रीस और रोम पौराणिक देवताओं की पूजा करते थे। आज दुनिया की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ईसाई, यहूदी और मुसलमानों से बना है, जो मूसा और अब्राहम के ईश्वर या अल्लाह की पूजा करते हैं, या अल्लाह, मुसलमानों द्वारा पूजे जाने वाले ईश्वर की पूजा करते हैं। उनमें से प्रत्येक के बीच और उनके भीतर भारी मतभेद हैं। दुनिया का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म जैसी मान्यताओं का पालन करता है। फिर भी आदिम राष्ट्रों में ऐसे अन्य लोग भी हैं जिनके पास अपनी समय सम्मानित आध्यात्मिक मान्यताएं हैं। ये उदाहरण मनुष्य के उस मूलभूत गुण की ओर संकेत करते हैं जो सृष्टि से ही अस्तित्व में है। वह है किसी सत्ता को सम्मान देने और उसकी पूजा करने की इच्छा। अध्याय दो। पूजा क्या है? मनुष्य के हृदय का दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। सृष्टि के निर्माण के कई वर्षों बाद सृष्टिकर्ता ने देखा कि मनुष्य की दुष्टता पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है और उसके मन के विचारों की हर कल्पना निरंतर बुरी ही होती है, और यहोवा को इस बात का पछतावा हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया है, और वह मन ही मन बहुत दुखी हुआ। वह मनुष्य से यह अपेक्षा करता है कि वह न्याय से काम करो, कृपा से प्रीति रखो और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलो। यीशु ने शैतान से कहा, अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। परंपरा का पालन करने वाले फरीसियों से उन्होंने कहा, ये लोग बाहरी तौर पर अपने होठों से मेरा आदर करते हैं, लेकिन उनका दिल मुझसे दूर रहता है। वे व्यर्थ में मेरी आराधना करते हैं, उनकी शिक्षाएं मनुष्यों द्वारा सिखाए गए नियम मात्र हैं। अन्य व्यर्थ उपासना इसमें स्वर्गदूत, मूर्ति, लोग, अज्ञानी और शैतान की पूजा शामिल है। इस तरह की पूजा पापपूर्ण है। यीशु ने अपने शरीर को एकमात्र बलिदान के रूप में अर्पित किया जो मनुष्य से पाप को दूर कर सकता था। परमेश्वर ने उसे कब्र से उठाकर उसकी भेंट स्वीकार की, जिससे उसे मृत्यु और मनुष्य पर शैतान के कब्जे पर विजय प्राप्त हुई। क्षमा और मेलमिलाप का अवसर उन सभी के लिए उपलब्ध हो गया जिन्होंने मसीह में अपना भरोसा और आज्ञाकारिता रखना चुना। पाप की क्षमा के द्वारा परमेश्वर के साथ मेलमिलाप करने वाले लोग उसके प्रति श्रद्धा, सम्मान और आराधना में अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। मनुष्य अपने भीतरी अस्तित्व, आत्मा और हृदय से अपने अच्छे कार्यों के द्वारा ईश्वर की आराधना और सेवा करता है और अपने ईश्वर के प्रति श्रद्धा या सम्मान प्रकट करता है। मनुष्य किसी व्यक्ति को बहुत धार्मिक या भक्त ईसाई समझ सकता है, क्योंकि वह उसके द्वारा किए जाने वाले सभी अच्छे कार्यों को देखता है, लेकिन उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के उद्देश्यों से पूरी तरह अनजान रहता है। उदाहरण के लिए, मनुष्य की पहचान पाने की उसकी इच्छा या उसकी आज्ञाओं का पालन करके ईश्वर का पुरस्कार प्राप्त करना सच्ची पूजा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई श्रद्धा, सम्मान या सम्मान मौजूद नहीं है। कोई भी कार्य पूजा नहीं है, हालांकि यह किसी को लाभ पहुंचा सकता है, जब तक कि यह प्रेम से प्रेरित आंतरिक मनुष्य के भीतर उत्पन्न न हो। केवल ईश्वर ही मनुष्य के हृदय के इरादे को जानता है। पूजा के लिए प्रेम, विश्वास और कार्य की आवश्यकता होती है। अध्याय 3। किसकी आराधना की जानी चाहिए? ईश्वर आत्मा है, भौतिक नहीं, और उसके उपासकों को आत्मा में पूजा करनी चाहिए, न कि एक अनुष्ठान कार्य, बल्कि सच्चाई में भावना और प्रेम की अभिव्यक्ति, वास्तविक और वास्तविक, न कि झूठा और नकली। किसी को सत्य का पूरा ज्ञान हो सकता है, लेकिन प्रेम नहीं, तो उसकी पूजा अस्वीकार्य है। यह व्यर्थ है और इसका कोई मतलब नहीं है। यूहन्ना 4:24 में कहा गया है कि परमेश्वर आत्मा है। इन शब्दों में सबसे सरल फिर भी सबसे गहन सत्य है जो कभी नश्वर कानों पर पड़ा। उनका सत्य रहस्योद्घाटन की महान महिमाओं में से एक है और मानवीय तर्क के गलत निष्कर्ष को सही करता है। वे दिखाते हैं कि ईश्वर स्थान और समय की सभी सीमाओं से पूर्णतया मुक्त है, इसलिए वह मंदिरों तक सीमित नहीं है। ईश्वर भौतिक नहीं है, जैसा कि मूर्ति पूजक दावा करते हैं। वह कोई अमूर्त शक्ति नहीं है, बल्कि एक सत्ता है। वह मंदिरों, बलिदानों आदि की सभी आवश्यकताओं से ऊपर उठा हुआ है, जो मनुष्य के लिए लाभदायक हैं, परंतु परमेश्वर के लिए नहीं। पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर का स्वभाव है प्यार, जिंदगी, सच, न्यायपूर्ण, पवित्र और धर्मी, कृपालु, शांति, वफादार। परमेश्वर को क्या पसंद है? मत्ती 5 के पहाड़ी उपदेश में यीशु ने कई कार्यों और व्यवहारों की पहचान की जो उसे प्रसन्न करते हैं, धन्य कहकर यह संकेत दिया कि परमेश्वर प्रसन्न है और उन लोगों को आशीर्वाद देते हैं जो आत्मा में दरिद्र, वे जो अपने पाप और परमेश्वर की धार्मिकता को पहचानते हैं। शोक मनाना, वे लोग जो अपनी आध्यात्मिक कमजोरी से दुखी हैं, न कि वे लोग जो जीवन में अपनी शारीरिक दुर्दशा से दुखी हैं। सज्जन, वे जो अभिमानी, अहंकारी या घमंडी न हों। धार्मिकता के लिए भूख और प्यास, वे लोग जो लगातार यह जानने और करने की कोशिश करते हैं कि क्या सही है और परमेश्वर को प्रसन्न करता है। दयालु, दया करने वाला, न कि आलोचनात्मक या निंदा करने वाला। हृदय से शुद्ध, वे जो सच्चे हैं, झूठ से मुक्त हैं, उन सभी चीजों से मुक्त हैं जो गंदा करती हैं, मिलावट करती हैं, भ्रष्ट करती हैं। शांति निर्माता, वे लोग जो अपने साथियों के साथ शांति से रहते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने में मदद करते हैं। एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय बनो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। न्याय मत करो, नहीं तो तुम पर भी न्याय किया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार तुम दूसरों का न्याय करते हो, उसी प्रकार तुम्हारा भी न्याय किया जाएगा। ऐसे बोलो और काम करो जैसे कि तुम उन लोगों की तरह हो जिनका न्याय स्वतंत्रता देने वाले कानून के अनुसार होगा, क्योंकि जो कोई दयालु नहीं है, उस पर दया के बिना न्याय किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे पुराने नियम के कानून में परिस्थितियों पर विचार किए बिना निर्धारित किया गया था। दया न्याय पर विजय पाती है, याकूब 2:12-13। आदेशों का उल्लंघन करने पर न्याय की आवश्यकता होती है जो दंड की मांग करता है, लेकिन परमेश्वर मसीह में उन लोगों पर दया करता है। एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय बनो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। किसी का न्याय मत करो, अन्यथा तुम्हारा भी उसी तरह न्याय किया जाएगा जिस तरह तुम दूसरों का न्याय करते हो। मसीहियों को सावधान रहना चाहिए कि वे दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ख कोई भी व्यक्ति जो किसी प्रियजन को चोट पहुंचाता है, ख कोई व्यक्ति जो पाप करता है, पश्चाताप करता है और वापस लौट आता है, ख जो लोग भटक गए हैं और जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया है और मसीह के पास वापस नहीं लौटे हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को एक बुद्धि भी दी है जो उसे सोचने, तर्क करने, विश्लेषण करने और चुनने की अनुमति देती है। मनुष्य सत्य को पहचानकर, दया दिखाकर, न्याय की इच्छा करके और शांतिपूर्ण संबंधों को आगे बढ़ाकर परमेश्वर की समानता में बने रहने का चुनाव कर सकता है या वह ऐसा न करने का चुनाव कर सकता है। इस प्रकार परमेश्वर अपने पिता और सृष्टिकर्ता के साथ अपने रिश्ते में टूट सकता है। चूंकि सभी मनुष्यों ने पाप किया है और उन्हें क्षमा की आवश्यकता है, इसलिए उनके निर्माता द्वारा दी गई तर्क क्षमता मनुष्य को अपने तरीके बदलने, क्षमा प्राप्त करने और मसीह की तरह जीने की अनुमति देती है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए लोगों के रूप में पवित्र और प्रिय अपने आप को करुणा, दयालुता, नम्रता, सौम्यता और धैर्य से सुसज्जित करें। एक दूसरे के साथ सहन करें और एक दूसरे के खिलाफ जो भी शिकायतें हों उन्हें क्षमा करें। जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया है वैसे ही क्षमा करें। और इन सभी गुणों के ऊपर प्रेम को धारण करें जो उन्हें पूर्ण एकता में बांधता है। उनमें बढ़ने से ईसाई परमेश्वर की छवि को प्रतिबिंबित करेंगे और आत्मा के फल को प्रदर्शित करेंगे जो प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दयालुता, भलाई, विश्वास, नम्रता और आत्मसंयम है। ईश्वर की इन विशेषताओं को न तो महसूस किया जा सकता है, न सूंघा जा सकता है, न चखा जा सकता है, न देखा जा सकता है और न ही सुना जा सकता है। हमें प्रेम और क्षमा की सख्त जरूरत है। पाप और विद्रोह की हमारी स्थिति में हम मृत्यु के पात्र हैं जिसकी न्याय को आवश्यकता है। यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से परमेश्वर क्षमा किए जाने का अवसर प्रदान करता है। जब कोई व्यक्ति विश्वास और आज्ञाकारिता के माध्यम से परमेश्वर के क्षमा के उपहार को स्वीकार करता है तो उसके भीतर प्रेम, शांति और कृतज्ञता का भाव होता है और उस प्रेम को विभिन्न तरीकों, शब्दों, विचारों और कार्यों के माध्यम से व्यक्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है। परमेश्वर क्या देखता और सुनता है? मानव आवाज की सुंदर ध्वनि या मनुष्य के हृदय से निकलने वाली अभिव्यक्तियां, जो धन दिया जाता है या धन देने के कारण, गीत के शब्द या शब्दों से उत्पन्न हृदयस्पर्शी विचार, प्रार्थना के शब्द या पश्चातापी हृदय भले ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में कठिनाई हो, उपदेश प्रस्तुत किए गए या उपदेश दिए गए, प्रभु भोज में भाग लेना या मसीह के प्रायश्चित बलिदान और पुनरुत्थान को याद करना, एक साथ एकत्र होने में असफल होना या एकत्र होने पर दूसरों को शिक्षित करने में असफल होना, बाइबल पढ़ना या परमेश्वर के संदेश पर मनन करना, एक अच्छा नैतिक जीवन जीना या एक त्यागपूर्ण जीवन जीना, ईश्वर की छवि को प्रतिबिंबित करने के लिए दैनिक जीवन जीना, आपके शरीर को जीवित बलिदान के रूप में अर्पित करना है जो ईश्वर को समर्पित है और उसे प्रसन्न करता है। इस तरह की पूजा उचित है। एक आभारी ईसाई अपने उद्धारकर्ता के रूप में मसीह के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के तरीकों और अवसरों की तलाश करेगा। वह जितना संभव हो सके यीशु के उदाहरण के करीब रहेगा और परमेश्वर की इच्छा को समझने की कोशिश करेगा जो उसने पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरितों के माध्यम से दी थी। ईसाई अपने सभी कार्यों में उसकी प्रशंसा करेगा। पाठ 4। पूजा कब करनी चाहिए? जीवित बलिदान बनकर व्यक्ति हर समय और हर बात में परमेश्वर की आराधना करेगा, परमेश्वर को धन्यवाद देगा, उसकी महिमा करेगा और उसकी स्तुति करेगा, साथ ही निम्नलिखित तरीकों की तलाश करेगा। परमेश्वर के अन्य बच्चों और जरूरतमंदों की सहायता करें। दूसरों को त्यागपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करें। क्षमा और उद्धार का संदेश घोषित करें। मसीह का जीवन, मृत्यु, दफन, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण। ईसाइयों को दूसरों को मसीह में शिक्षित करने और संगति करने का काम नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वे कब और कहां भी इकट्ठा हों। वे अपने उद्धारकर्ता, उनके संदेश, उनके लोगों के प्रति वफादार रहेंगे और सुसमाचार से शर्मिंदा नहीं होंगे, क्योंकि यह उद्धार के लिए ईश्वर की शक्ति है। चूंकि तुम मसीह के साथ जी उठे हो, इसलिए अपना पूरा मन स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ, जहां मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। सांसारिक वस्तुओं, स्वयं की संतुष्टि के लिए पर नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम मर गए और अब तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह, जो तुम्हारा जीवन है, प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट होगे। मसीह की शांति तुम्हारे हृदयों में राज्य करे, जिससे तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, और धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध बुद्धि सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने हृदय में कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति और आत्मिक गीत गाओ। और जो कुछ भी तुम करते हो, वचन से या कर्म से, सब कुछ प्रभु यीशु के नाम और अधिकार से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। निम्नलिखित दो उदाहरण यहूदी और गैर यहूदी मसीहियों के एकत्र होने से संबंधित हैं, जिनमें से किसी को भी आदेश नहीं बल्कि विभिन्न स्थानों पर की गई कार्रवाई माना जाना चाहिए। एक, और जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उस दिन लगभग 3,000 लोग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति करने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लग गए, और वे प्रतिदिन एक साथ मंदिर में जाते और अपने अपने घर में रोटी तोड़ते और आनंद और उदार मन से अपना भोजन ग्रहण करते और परमेश्वर की स्तुति करते और सब लोगों से अनुग्रह पाते थे। बी, ये लोग आगे बढ़कर त्रोआस में हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन हम अखमीरी रोटी के दिनों के बाद फिलिप्पी से रवाना हुए और 5 दिन में त्रोआस में उनके पास पहुँचे, जहाँ हम 7 दिन तक रहे। सप्ताह के पहले दिन, जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए थे, रोटी तोड़ने का मतलब प्रभु का भोज, एक आम भोजन या दोनों हो सकता है, सेवा, शिक्षा, गायन और चेतावनी के द्वारा परमेश्वर की आराधना करना किसी विशेष दिन पर एक साथ मिलने तक सीमित नहीं है। पाठ 5, पूजा कहाँ करनी है? जब परमेश्वर ने इसराइल के बच्चों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, तो उसने उनके साथ एक वाचा स्थापित की, जिसमें एक बैठक का तंबू शामिल था, जहां उसके पुजारी परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते थे। वादा किए गए देश में उनके बसने के कई साल बाद, सुलेमान ने उनकी पूजा और बलिदान के लिए यरूशलेम में एक मंदिर बनवाया। सालों बाद यीशु ने सामरी महिला से कहा, विश्वास करो, मेरा समय आ रहा है जब तुम पिता की आराधना न तो गिरिजिन पर्वत पर करोगे और न ही यरूशलेम में। यूहन्ना 4:21। आने वाले नए वाचा में पूजा मानव निर्मित मंदिरों या विशिष्ट स्थानों में नहीं, बल्कि मनुष्य के हृदय में, परमेश्वर के मंदिर में होगी। नए नियम ने पुराने नियम के मंदिर की पूजा को समाप्त कर दिया। यीशु ने अब और भी बेहतर सेवकाई प्राप्त कर ली है, क्योंकि जिस वाचा की वह मध्यस्थता करता है, वह बेहतर वादों पर आधारित है। यदि मूसा के माध्यम से की गई वाचा दोष रहित होती, तो दूसरी वाचा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों में कुछ गलत पाया, जब उसने कहा, देखो, यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आ रहे हैं जब मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने के साथ एक नई वाचा स्थापित करूंगा। यह उस वाचा के समान नहीं होगी जो मैंने उनके पूर्वजों के साथ उस समय की थी, जब मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से बाहर निकाला था। क्योंकि वे मेरी वाचा के प्रति वफादार नहीं रहे, इसलिए मैंने उन्हें अनदेखा कर दिया। यहोवा की यह वाणी है। क्योंकि यह वह वाचा है जो मैं उस समय के बाद इसराइल के घराने के साथ बांधूंगा। यहोवा की यह वाणी है, मैं अपने नियमों को उनके मन में डालूंगा और उन्हें उनके हृदय पर लिखूंगा। मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। पाप बलि प्रायश्चित बलिदान के रूप में अपने सांसारिक शरीर को परमेश्वर पिता को अर्पित करने के द्वारा यीशु ने पुराने नियम को पूरा किया, जिसमें मूसा के माध्यम से परमेश्वर द्वारा दी गई मंदिर पूजा शामिल थी, और इसे एक नए नियम के साथ प्रतिस्थापित किया जो बेहतर वादों पर आधारित था, जिसमें छुटकारा पाए हुए मनुष्य परमेश्वर का मंदिर बन जाते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करता है तो परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और तुम वह मंदिर हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर तुम में पवित्र आत्मा का मंदिर है जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है? तुम अपने नहीं हो क्योंकि कीमत देकर खरीदे गए हो, इसलिए अपने शरीर में परमेश्वर की महिमा करो। चूंकि मसीही लोग परमेश्वर का मंदिर हैं और पवित्र आत्मा उनमें वास करता है, इसलिए उन्हें अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को स्वीकार्य बलिदान के रूप में प्रस्तुत करना है, जो आपकी आत्मिक आराधना है। न तो स्थान और न ही भौतिक संरचना महत्वपूर्ण है, लेकिन मसीह में रहने वालों की इच्छा, मन का इरादा और रवैया महत्वपूर्ण है। कोई अपना जीवन कैसे जीता है और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है और अपने संसाधनों जैसे कि पैसा, समय और क्षमताओं को देकर कैसे प्रतिक्रिया करता है, यही मायने रखता है। हमारा जीवित बलिदान, हमारे जीवन में किए जाने वाले कार्य, किसी भौतिक स्थान जैसे कि माउंट गेरिज़िम, यरूशलम या चर्च की इमारत के बजाय हर जगह किए जाने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, मांस और रक्त नहीं। परमेश्वर का प्रेम, पवित्रता, नम्रता, न्याय, दया और विश्वासयोग्यता का स्वभाव मसीहियों के लिए जीवित बलिदान बनने के लिए आवश्यक है। पाठ 6। उपासना कैसे करनी चाहिए? आराधना के क्या, कौन, कब और कहां को समझना आराधना के तरीके को समझने में मदद करता है। यदि खुद को एक जीवित बलिदान के रूप में देना सेवा की जीवन शैली है, तो ऐसे कई कार्य हैं जो कोई कर सकता है और करना चाहिए जिन्हें आराधना माना जाएगा, लेकिन उन्हें परमेश्वर की महिमा, सम्मान, प्रशंसा और आराधना करते हुए उनके उदाहरणों का पालन करके मसीह की तरह बनने की इच्छा से प्रेरित होना चाहिए। मनुष्य को अपने आध्यात्मिक अस्तित्व में पूजा करनी चाहिए जिसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। पूजा कोई अनुष्ठान नहीं है। पूजा कोई शारीरिक कार्य, कोई अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह भीतर से आने वाली चीज है, प्रेम और सम्मान, प्रशंसा और प्रसन्नता की इच्छा से। कोई भी व्यक्ति जो शारीरिक कार्य करने में पूरी तरह से असमर्थ है, फिर भी वह ईश्वर की पूजा और सेवा कर सकता है। मनुष्य के आंतरिक अस्तित्व, उसके हृदय तथा भावनाओं, अनुभूतियों और दृष्टिकोण के केंद्र से प्रेम, आराधना और प्रशंसा का प्रवाह ही ईश्वर है। सच्ची उपासना, यह अकेले या समूह में की जा सकती है। इसी तरह की क्रियाएं प्रेम, आराधना और प्रशंसा की भावनाओं और भावनाओं के बिना किसी आदेश का पालन करने के उद्देश्य से की जाती हैं या जो स्वयं पर केंद्रित होती हैं, वे व्यर्थ की उपासना हैं। यीशु ने कहा, ये लोग अपने बहुत से बोले गए शब्दों से मेरा सम्मान करते हैं, लेकिन उनके दिल, विचार और दिमाग मुझसे दूर हैं। वे व्यर्थ में मेरी पूजा करते हैं। यदि किसी के विचार और भावनाएं ईश्वर के ज्ञान पर आधारित हैं और उनका ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध है, तो उन्होंने अपने पूरे अस्तित्व को ईश्वर को प्रसन्न करने की वास्तविक और सच्ची इच्छा, आत्मा और सच्चाई, नकली या कुछ अनुष्ठान नहीं, के साथ प्रेम करने, पूजा करने, स्तुति करने, सेवा करने और पूजा करने के लिए प्रशिक्षित किया है। नए नियम के पुजारियों को दिए गए परमेश्वर के निर्देश भी विशिष्ट थे। हालांकि वे पुराने नियम के निर्देशों से बहुत अलग थे। मसीह में नए नियम के पुजारियों, पुरुषों और महिलाओं को जीवित बलिदान होना चाहिए, क्योंकि वे प्रतिदिन मसीह के मिलमिलाप के संदेश की घोषणा करके, अच्छे कर्म करके, दूसरों को वफादारी के लिए प्रोत्साहित करके और धन्यवाद, प्रशंसा और आराधना करके परमेश्वर की सेवा करते हैं।